का था, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सुदर्शन प्रियदर्शनी की लिखी कहानी आचार संहिता। नाहर जान गया है कि उसने एक अलिखित आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए। वो ये भी जानता है कि ऐसी आचार संहिता का दंड भोगता वो इस देश में अकेला नहीं है। उस जैसे बहुतेरे सिर फिरे हैं जिन्होंने उसी की तरह कहीं मायावी गोरी चमड़ी के तहत अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने ग्रीन कार्ड के उपनिषद रचे हैं। धीरे धीरे सबके उपनिषद बोधे हुए हैं और होते चले गए हैं, किंतु उस जैसे बोंगे के सिर पर आज भी उन उपनिषदी मंत्रों की अनुगूंज मधुमक्खी आवाज में गूंग गूंग करती भिनभिना रही है। नाहर उन संहिताओं के हाथों चाहे उतना ना बंधा हो, किंतु उनकी उप संहिताओं में अवश्य जकड़ गया है। हमारा परिवार एक न्यूक्लियस परिवार होगा। कोई तुम्हारा संबंधी या माँ बाप हमारे घर में नहीं रहेगा। हाँ, मिलने आ सकते हैं, अगर रहना होगा तो बाहर होटल में रहेगा। तुम्हारे हिंदुस्तानी दांव पेंच, नियम संस्कार, भाषा, किंवदंतियां या घरेलू रीति रिवाजों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बच्चे कृत्रिम बनकर बड़े होंगे और पलेंगे। तुम हिंदुस्तान नहीं जाओगे, वहां की बीमारियां लाकर अपने बच्चों को नहीं दोगे। प्री नेचुरल एग्रीमेंट के तहत हमारी कोई भी समस्या हो तो घर तुम छोड़ोगे, मैं नहीं। बच्चों का लालन पालन तुम पर और उनकी देखरेख आधी आधी। सगाई के अंगूठी की कीमत कम से कम तुम्हारी वार्षिक आय का 10वां भाग होगा और उस पर बाद में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। विवाहोत्तर आचार संहिता कुछ इस प्रकार है। बर्तन साफ करना, कुत्ते की देखभाल, नहलाने से टहलाने तक। मुझे खाना बनाना नहीं आता और हिंदुस्तानी तो कदाचित नहीं। जब कभी तुम हिंदुस्तानी खाना बनाओ तो उसकी स्मेल का इलाज तुम्हें ही करना होगा। खुद हिंदुस्तानी खाना चाट चाट कर खाती है। वर्ष में 2 बार छुट्टियों में बाहर कहीं जाना होगा। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब या कहीं घूमने जाए तो कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन वो नहर के समय पर पूरी निगरानी रखेगी। हिंदुस्तानी पतियों की टांग अड़ाने की और संस्कारी रोक टोक को ये लोग खूब अच्छी तरह से जानती हैं। ब्लडी इंडियन के हाथों मैं अपने बच्चे नहीं सौंप सकती। हिंदुस्तानी माएं बच्चों को संभालती कम और बिगाड़ती ज्यादा है। कभी कभार तुम मंदिर मस्जिद जाओ तो जाओ, बच्चे साथ नहीं जाएंगे। धर्म के मामले में उन्हें हम कंफ्यूज कर नहीं सकते। आज उसे लगता है कि वो किसी मकड़ी के जाल में फंस गया है। एक हाथ से जाला अलग करता है तो दूसरी ओर से आकर लिपट जाता है। और अब आंखों के छलावे तो उतर गए हैं, किंतु उनकी काई रोम रोम में लग गई है। कैथी को मैंने क्या समझा था और वो क्या निकली। वो सुंदर थी या है, काया के बाहरी पारदर्शी रंग के नीचे ऐसा क्या सम्मोहन था जो मुझे खींच कर इस गर्त तक ले गया। उसी काया के नीचे रेंगती चीटियां आज बाहर रेंगने लगी और मेरे रक्त को प्यासी हो गई है। नाहर अपने आप से बार बार पूछता है कि वो क्यों भूल गया कि चेहरा ढकने से सारी औरत जात एक सी होती है। फिर भी ये सम्मोहन आदमी को कितना टुच्चा बना देता है। अब उस अलिखित समझौते की स्याही भी स्याह होने लगी है। केवल एक व्यक्ति, केवल एक कांटा जैसे एक भरे पूरे परिवार और उसके आसपास के सारे वातावरण को धुआंसा कर देने में समर्थ हो जाता है। आज माँ और अपने चाचा ताऊ की आवाजें जैसे सुरंग में चिल्ला चिल्ला कर लौटने लग गई हैं, अनुगूंज की तरह सुनाई दे रही हैं। बेटा, हमारी तो तू छोड़, तेरी अपनी जिंदगी नरक बन जाएगी। अरे, संस्कार और शर्म नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? तू अमेरिका में पैदा होता तब भी शायद हम ये सब हजम कर पाते। उस पर तू यहाँ पैदा हुआ है, तेरे चारों ओर संस्कार गुड़ की चाशनी की तरह लिपटे हुए हैं, कैसे निकालेगा उन्हें अपने तन मन से? पर उस समय कैथी के सिवाय सब झूठ, स्वार्थ, बेमानी लगता। आज तक समझ नहीं आया कि फूटे माथे को देखकर भी हम अपना ही माथा फोड़कर क्यों देखना चाहते हैं, कि लहू किस रंग का है। पिछले सप्ताह पुरुषोत्तम की एनी ने हद कर दी, अपने कपड़े फाड़कर चार खरोचे अपने बाजुओं पर हेयर पिन से खींचकर पुलिस बुला ली और पुलिस पुरुषोत्तम को पकड़कर ले गई। कहने को मेरा नाम नाहर है, पर शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता हूं तो लगता है कहीं कोई आठवीं क्लास का बच्चा कक्षा के पिछले बेंच पर दुबका बैठा है। गैराज खुलने की आवाज आ रही है, लगता है कैथी आ गई है। मोना और इरा अंदर दौड़ी सी आ रही है। नाहर के हाथ पाओ में एक अन्यथा हरकत पैदा हो गई। उसने फटाक से फोन रख दिया। नाहर माँ से बात कर रहा था। वो हमेशा घर के फोन लाइन यानी कि लैंडलाइन से ही माँ को फोन करता था, क्योंकि जाने वाली कॉल का एकदम पता नहीं चलता। सेलफोन तो ना मुराद जान की दुश्मन है, आती जाती हर फोन कॉल इनके दांतों में किरकिरी की तरह अटी रहती है, जो गाहे बगाहे कहती की नजर की चुभन बन जाती है। तुमने सरिता को फोन किया था? हाँ, क्यों? पर क्यों? यूं ही हालचाल पूछने के लिए? इतनी क्या आन पड़ गई थी? उसने कभी मेरा हाल नहीं पूछा। नाहर मन ही मन बुदबुदाया और दांत पीस कर रह गया। उसका मन चाह रहा था कि कहे, कोई क्यों पूछे तुम जैसी चुड़ैल का हाल? नाहर स्वयं को कोचना सीख गया है। वो स्वयं अपने आप को पहचान नहीं पाता, कितना बदल गया है। उसकी अपनी सोच और अपनी दृष्टि भी कितनी कुंद हो गई है। पिछले 10 सालों से उसकी नाक के नीचे कैथी उसकी माँ और सविता को छोटा करती रही है। उस पर तुर्रा ये कि वो स्वयं माँ और बहन का साथ ना देकर कैथी का साथ देता रहता है। उसके अपने इसी व्यवहार से उसके संबंधों के बीच एक दुराव आ गया, मीलों लंबा खलाव पैदा हो गया। उसने स्वयं कैथी के इन विशिष्ट मंत्रणाओं वाले यज्ञों में संविधाएं डाल डाल कर अपनी छतें धुआसी की हैं। आज किसे दोष दें? यहां तक कि सविता राखी भेजती और कैथी नाक मुंह सिकोड़ती। ये तुम्हारे ब्लडी रिवाज और ढकोसले, ये सब छिपाकर जैसे अपने अंदर के दैत्यों से लड़ लड़ कर अपना सामना करता। रसोई के शेल्फ में उसने अपना छोटा सा मंदिर बना रखा था। माँ जब तब दिवाली दशहरे पर लक्ष्मी और शिव की छोटी छोटी मूर्तियां भेजती, वो उन्हें मंदिर में छुपाकर श्रद्धा के साथ रख लेता और चोरी छुपे रसोई में काम करते कर या फिर दफ्तर जाते हुए माथा टेक लेता। कैथी के सामने तो त्योहारों का नाम तक ले नहीं सकता, तब भी वो उसे ऐसी हिकारत और निम्र दृष्टि से देखती है कि स्वयं त्योहार का नाम दुनियासा हो जाता है। पहले माँ दिवाली होली पर शगुन भेजती थी, मिठाई भेजती थी, पर उस शगुन की कैथी के हाथों अपमान होते देख उसने माँ को कुछ भी भेजने के लिए मना लिया था। उसे लगता है माँ की उम्र तो बीत जाएगी जब तक वो उन्हें विश्वास दिला पाएगा कि वो वही बेटा है। माँ सब समझता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा हो गया था। उस दिन उसने वापस आकर पूछा था, क्या माँ ने फोन किया था? नहीं तो। तुम्हें किसने बताया? माँ ने। कैथी बुदबुदाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। स्पष्ट था माँ ने फोन किया और कैथी ने उसे बताया नहीं। माँ अस्पताल में थी, हार्ट पेन के कारण इमरजेंसी में दाखिल हुई थी। सरिता ने कई बार फोन किया पर कैथी ने नाहर को बताया तक नहीं। उसका सेल फोन कहीं मिल नहीं रहा था। उस दिन कैथी ने बच्चों को नाहर के पीछे लगा दिया उन्हें फ्लोरिडा वैकेशन पर ले जाने के लिए, बच्चों को कुछ दिन की छुट्टियां जो थी। सरिता सेल पर फोन करती रही क्योंकि जब सेल फोन मिला जिसे कैथी ने ही कहीं बच्चों के खिलौनों में छुपा दिया था, उसमें उसकी लगभग 20 कॉल्स थी और माँ का अस्पताल में चौथा दिन था। उस दिन वो टूट गया था। उसे लगा कि वो किसी चट्टान के नीचे दब गया है और सांस ले नहीं पा रहा है। स्पष्ट रूप से वो कभी सरिता और माँ को पता नहीं लगने देता कि ये सब कैथी कर रही है। यूं बहुत सालों तक तो स्वयं उसे भी कहां पता चला था। छोटी छोटी पहाड़ी तराइयों से इटलाती हुई सर्दी धीरे धीरे पगडंडियां उतरने लग गई थी। एक बार सर्दी उतरती तो फिर उतरती और सब कुछ अपने पंजे में तबोच लेती थी। शेर के जबड़ों में फंसी प्रकृति भी शांत हो जाती। लबातों पर लबादे चढ़ाकर ही दरवाजे से बाहर निकलना हो पाता था। ऐसे में अध बीच रात जब कभी उसकी आंख खुलती तो माँ आकर आंखों में बैठ जाती, जिसके परिप्रेक्ष्य में झांकती सरिता अपनी जवानी की उजाड़ पगडंडियों पर बुद्ध बनी बैठी दिखाई देती। माँ की विवश आंखों में जैसे मेरी ओर एक दारिद्र दृष्टि, उस दृष्टि में विवशता, हाथ बंधे कैदी सी राहत के लिए मेरी ओर देखती और हताशा में लौट जाती। मैं बेचैनी में उठ जाता और आकर ड्राइंग रूम के गलियारे में इधर उधर आगे पीछे टहलते टहलते सुबेर कर देता। कैथी उठती और बिना कुछ कहे या पूछे उसकी त्योरियां चढ़ जाती। मुझे लगता मेरे अंदर कुछ उफनने को तैयार है। जिंदगी कभी एक रस रह नहीं पाती। धूप और छांव की तरह, सांझ और सबेर की तरह पहलू बदलती रहती है। ऐसे में लगता है जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते खेलते आप बीच से उठकर बाहर चले गए और वापस आने तक किसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसी ने उन सबके बीच से बस बचपन चुरा लिया हो। यूं माँ ही नहीं, उस पुराने घर की पुश्तैनी भरती हुई दीवारों में उगड़ी ईंटों की झरीटों से जो दूर की छतों पर पतंग उड़ाते साथी दिखते थे, वो भी कहीं उम्र के सालों की तरह साथ छोड़ गए थे। पिछली बार जब माँ और सरिता आई थी तो बड़ी कड़ाके की शीत लहर चल रही थी। उसे एक दिन के लिए बाहर जाना था। माँ को कहकर गया था कि वो उसके आने से पहले ना जाए, पर उस मौसम में उसे पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। मौसम पर भी जैसे उस दिन काली चढ़कर बोल रही थी। बर्फीली हवाएं झकझोर देने वाला झक्कड़ असमय अंधकार ने जैसे सारे दिन का मुंह काला कर दिया था। रास्ते भर वो आशंकाओं में डूबता उतरता रहा। वो जाना नहीं चाहता था माँ को छोड़कर, पर काम की विवशता थी। कैथी पर उसे तनिक भी भरोसा नहीं था। फिर भी वो ये नहीं सोचता था कि कैथी इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी ऊंची और इतनी असंवेदनशील हो सकती है। कैथी अंततः वही निकली जो आज तक लोग अनुमान लगाते थे। माँ को नकारना एक तरफ, सरिता को तो वो ऐसे दुत्कारती थी जैसे छोटी बच्ची हो। सरिता की योग्यता, ऊंची डिग्री, उसकी भव्य नौकरी या तो उसे ईर्ष्या से डसती थी या उसे अपनी हीनताओं की ग्रंथियों से ग्रसित करती थी। कभी सोच नहीं सकता था कि कैथी से एक अदना लड़की जो उस समय उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, एक दिन उसके पारिवारिक जीवन की ऐसी धज्जियां उड़ा देगी। वो सोचता है प्रेम कुछ होता भी है या नहीं, प्रेम का वजूद इतना बेमानी और झूठा है। जो महज एक गढ़ी हुई कहानी सा लगता है। कुछ ग्रंथियों का किसी विशेष स्थिति में विशेष तरह का हार्मोनिक स्खलन, नहीं तो देवतुल्य अमृत जैसा प्रेम एक दिन हाण मास के इसी पुतले में जहर बनकर जानलेवा क्यों बन जाता। आज ही नहीं, अनादिकाल से इस प्रेम का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा है। विश्वव्यापी संपदाएं, राज्य और सल्तनतों को रोनता आया है। वही बिजली के गर्जन सा उत्तंड होकर क्षण भर में क्षीण हो जाता है। पर इसी बीच न जाने कहां कहां वज्रपात कर क्या कुछ धारासाई कर जाता है। आश्चर्य की बात है कि ये सदियों से बार बार हर बार होता है और कोई इस आतताई का कुछ नहीं कर सका या नहीं कर पाया। माँ अंदर ही अंदर कितना रिश्ती होगी। माँ उसके लिए माँ नहीं, सदैव दोस्त बन कर रही। पिता की अनुपस्थिति उसने कभी खटकने नहीं दी। विवाह से पहले वो कैथी से विवाह करने की स्वीकृति के लिए बहुत चिंतित था, पर माँ ने पाश्चात्य समाज की दीवारों को उधेड़ने तक ही बात सीमित रखी। कैथी के विषय में एक शब्द नहीं कहा और अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सहज स्वीकार लिया। उस दिन से माँ के प्रति उसकी श्रद्धा का आर पार नहीं रहा। उसके बदले उसने माँ को क्या दिया? प्रताड़ना, उपेक्षा और दूरी। वो देखता सारे घर की समाजी माँ उसके घर में आकर एक छोटे से कमरे के अंधेरे कोने में अपनी विवशताओं एवं जरूरतों की पोटली दबाए चुपचाप बैठी रहती, जैसे समय नाप रही हो कि कब सरिता आए और उसे यहां से ले जाए। वो रोज अपने आप से लड़ता है, पर इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति, मन मसोसते मूठियां भीज जाती हैं। उस दिन जब वो उस तूफानी रात में घर आया था तो माँ जा चुकी थी। फिर भी उसने दबे स्वर में मोना से पूछा, बेटा दादी और बुआ कहाँ हैं? वो तो चली गई इस मौसम में। माँ ने कुछ कहा नहीं, उन्हें जाने दिया और फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कुछ खाया पिया कि नहीं? पापा मैंने नहीं देखा, मैं तो सुबह से यहां थी ही नहीं। कैथी कहाँ है? अंदर। पहली बार उसे लगा वो नाहर है, किंतु बेडरूम तक पहुंचने से पहले वो फिर भीगी बिल्ली बन गया। जब भी कुछ कहोगे मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, फिर कभी उनका मुंह नहीं देख पाओगे। कैथी के शब्द उसके पाओ में लिपट गए, वो दरवाजे पर ठिटक गया। बाहर बर्फ की लंबी शहतीरों के साथ वो भी गिलहरी जैसा लटक गया था, फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, ऐसे मौसम में माँ और सरिता को जाने क्यों दिया? तो क्या बांध कर रख लेती? उनकी अपनी मर्जी थी जाने की। वो कड़वा घूट पीकर रह गया। अपना नाइट सूट उठाकर गुसल खाने में चला गया। कुत्ते के मुंह में हड्डी लग जाती है और वो कितनी कितनी देर तक खाली हड्डी की भी जुगाली करता रहता है। इसी तरह यहां आकर यहां की बेलगाम स्वच्छंदता का स्वाद, डॉलर की महता, हिंदुस्तान में 50 गुना करके बताने का फरेबी दम आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। शावर की बौछार में पहली बार उसके आंसू शावर की बौछार को मात देते रहे थे। बाहर निकला तो उसकी आंखें सूज गई थी। वो कितनी देर तक खिड़की के पास बैठा रहा, सामने पब्लिक स्क्वायर की चिमनी से उठता धुआं, धुएं में बंधी परछाइयां और परछाइयों में झांकती उसकी धुआं धुआं जिंदगी तिरोहित हो रही थी। उठकर रसोई में गया, चाय का पानी रखा, कैथी के लिए कॉफी का परकलेटर ऑन किया और बच्चों के लिए पास्ता उबालने के लिए पानी रख दिया। सिंक में पड़े बर्तन भी ठिकाने लगा दिए। ऊपर से सामान्य दिखते हुए भी उस दिन वो असामान्य नहीं था। उस दिन आधी रात को उसने मोना को और इरा को उठाया, ठीक भारी भरकम कपड़े पहनाए और कुछ उठाए, पीटर के गले में जंजीर डाली और चुपचाप अलिखित आचार संहिता पर ठोकर मारता अपने बच्चों को लेकर पिछली खिड़की से कभी ना लौटने के लिए निकल गया। अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन प्रियदर्शनी की लिखी कहानी आचार संहिता। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था निधि मिश्रा ने।